الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 24ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. 24ویں پارے شروع ہوتا ہے تو سورہ زمر، ابھی اس کا کچھ حصہ 24ویں پارے میں ہے، زیادہ تر حصہ اس کا 23ویں پارے میں ہے. سورہ زمر جو ہے، یہ زمر کا جو نام ہے یہ زمرہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ، بہت سارے گروہ در گروہ کا لفظ. اور یہ اس لیے جو ہے اس کی بھی ایک نسبت ہے کہ یہ لفظ زمر جو لفظ ہے یہ اس صورت کے اندر استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے جنتی لوگوں کے لیے اور دوزخیوں کے لوگوں کے لیے، ان کے گروہوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی جو جنت والوں کو اور دوزخ والوں کو گروہ در گروہ جو ہے وہ لایا جائے گا، اور حشر کے میدان کے دو مناظر ہیں اور وہ ان کا صورت کے آخر میں ذکر ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نسبت سے یہ بھی ایک علامتی نام ہے زمر کا. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں اور پھر اسی کی شرکی تاریکی کے اندر جو زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں انکار کرنے والے کافر، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے جو ہے وہ لے جائیں گے دوزخ کے دروازے پر لے آئیں گے، اور پھر ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، اور پھر جہنم کا دروغہ جو ہے وہ ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم اس کے جو مستحق ٹھہرے ہو جہنم کے، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہ آیا تھا؟ تو پھر وہ اس بات کا وہاں پہ اقرار کریں گے کہ بلا شبہ رسول آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے ہمیں خبردار کیا تھا ان سب باتوں سے، لیکن ہم نے پھر ان کی بات کو مان کے نہ دیا اور انکار کیا. پھر اس کے برعکس جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی اسی طرح جو ہے وہ گروہ میں جو لایا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی نور کی روشنی کے اندر زندگی گزارنے والے ہوں گے، یہ متقین ہوں گے، اور ان کا استقبال جو ہے وہاں پہ کیا جائے گا، اور انہیں بڑے اعزاز کے ساتھ فرشتے جو ہے اپنے جل میں جو ہے وہ جنت کے جو لے کے آئیں گے، اور پھر جنت کے جو نگہبان دروغے ہیں ان کے ان حوالے کریں گے جو ان کا استقبال کریں گے، اور پھر کیوں عزت افزائی اور ان کی مہمان نوازی کریں گے. تو یوں دو مختلف جو لوگ تھے دنیا کے اندر، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے اوپر مختلف دو طرز عمل کا مظاہرہ کیا، ان کے دو مختلف انجام جو ہے یہاں پہ دکھائے گئے. اس کے بعد اس پارے کے اندر سورہ مومن ہے. سورہ مومن جو ہے ہمارے ہندوستان، پاکستان، برصغیر پاک و ہند کے اندر جو قرآن پاک پبلش ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا نام سورہ مومن لکھا ہوتا ہے، لیکن جو عرب علاقوں میں جو قرآن پبلش ہوتے تو وہاں پہ اس کا نام سورہ غافر لکھا ہوا ہے. یہ ایک ہی سورت کے دو نام ہیں، تو غافر اس لیے کہ اس کے شروع کے اندر غافر کا لفظ بھی ہے. مومن اس حوالے سے کہ اس میں ایک بنی اسرائیل کی قوم کے ایک مومن، یہ فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا جو ہے وہ قصہ بیان ہوا ہے، تو اس حوالے سے اس ریفرنس سے ایک علامتی نام جو ہے مومن کا ہے، اور اس کو سورہ طول بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور سورہ غافر بھی جو ہے کہا جاتا ہے. غافر کا مطلب ہے معاف کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک صفاتی نام ہے جو اس کی ایک تیسری سورت کے اندر، تیسری آیت کے اندر ہی جو اس میں آیا ہے. اور اس سورت کا جو موضوع ہے وہ حق و باطل کے درمیان کشاکش ہے، اور حق و باطل کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے اس سورت کے اندر. اور یہ بھی کہ یہاں پہ یہ جو سورت ہے یہ حمیم سے شروع ہوتی ہے، حمیم کے جو ہے مقطعات سے، اور پھر اس کے بعد اگلی 6 سورتیں، یعنی کل 7 سورتیں جو ہے وہ حمیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان 7 سورتوں کو حوامیم، یعنی جو حمیم کی جمع حوامیم کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہے. اور یہ سورتیں جو ہے وہ بہت اہم ہیں. ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ جو ہے وہ قرآن کا حسن ہے، اور اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی بتائیے کہ یہ قرآن کا مغز ہے، اور یہ ان میں سورہ حمیم سجدہ، سورہ شورہ، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور سورہ احکاف شامل ہیں، یہ اس سورت کو ملا کر سورت المومن کو. تو یہ جو ہے یہ 7 سورتیں ہیں جو یہاں سے جو شروع ہو رہی ہیں، اور इनमें तमाम सूरतों के में आप कह लें कि क्या इनमें जो कॉमन जो बात है वो ये है कि दावत के उस जो नबी अकरम सल्लम के दावत का दौर है ये उस वक्त से ताल्लुक रखती है जब तौहीद और शिर्क की बहस ने इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली थी कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर मक्के हयात में अरसा हयात जो है वो तंग होने लगा था, यानी प्रोसिक्यूशन का दौर जो है वो शुरू हो चुका था। इस सूरत की एक खासियत ये भी है कि इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की दास्तान का वो हिस्सा बयान हुआ है जो मोमिन आले फिरौन से मुतल्लिक है, और ये माजरा जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस सूरत के अंदर कुरान में इस जगह पे बयान हुआ है। और ये एक मोमिन शख्स था और बड़ा बातदबीर शख्स था, और इसके अल्लाह ताला ने जिक्र बड़ा नुमाया जली अंदाज के अंदर फरमाया है, और उसकी जो तकरीर जो है यहाँ पे नकल हुई है कुरान के अंदर ये किसी भी शख्स की सबसे तवील तकरीर है जो मुसलसल एक जगह पे जो है वो जिसका जो जिक्र आया है जो कई रुकुओं पर जो है वो मुश्तमिल है। और ये शख्स जो है फिरौन के बासर अफराद में से, यानी उसके दरबार में था और उसके बड़े बासर अफराद में होता, लेकिन ये शख्स जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था, और मूसा अलैहिस्सलाम और उसके दीन के लिए जो है वो फिरौन के दरबार में एक काबिल एतमाद मोर्चे की हैसियत जो है वो रखता था। तो ये शख्स जो है वो बहुत इस लिहाज से दावत और फिर जो है दावत के लिए जो उसने कलमे हक को जिस तरह बुलंद किया उस हवाले से ये बहुत अपनी मिसाल आप है, और दावत की तारीख के अंदर एक बड़ी रोशन मिसाल है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो है ये इसके जिसका जिक्र इस इहतमाम से फरमाया है। ये जो है ये तकरीर ये शख्स ने मोमिन इस मोमिन आले फिरौन ने उस वक्त की जब फिरौन के दरबार में बिल्कुल यानी ये बात कह लें कि फसल जब बिल्कुल पक चुकी थी और फिरौन के दरबार में फिरौन और उसके दरबारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे कि बस अब बहुत हो गया है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिर जब ये उसने जब महसूस किया कि ये बिल्कुल अब हकीकी तौर पे होने लगा है तो फिर उसने जो है उठकर अपने ईमान का ऐलान किया, और अपनी फिर जो है उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सारी दावत को फिरौन के दरबार के अंदर जो है वो बनवान जो है वो बयान कर दिया इस तरह। और यही वजह है कि ये बहुत जो है इंसानी तारीख पूरी तारीख के अंदर किसी जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहने की सबसे शानदार मिसाल जो है वो यही है जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो है इसका जिक्र किया। फिर इस वाक्य से जो है इसमें कुछ स्पार्क है इसके अंदर, इस वाक्य से कुफारे मक्का को यह बताना मकसूद है कि जो कुछ तुम इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी ताकत के बल पर करना चाहते हो, फिरौन ने भी बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ यही करना चाहा था, और तुम्हें पता है कि फिर फिरौन का अंजाम क्या हुआ, तो क्या तुम भी फिरौन के अंजाम से दो चार होना चाहते हो। और जो दूसरी बात इस वाक्य से पता चलती है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को ये सबक दिया गया कि ये जालिम बज़ाहिर कितने ही बालादस्त क्यों ना हो, तो उनके मुकाबले में कितने ही कमजोर क्यों ना हो, मगर यकीन रखो जिस खुदा के दीन के बोलबाला करने के लिए और जिसकी दावत लेकर तुम उठे हो और जिसके लिए तुम काम कर रहे हो उसकी ताकत के सामने किसी की कोई मजाल नहीं है। तुम बस सब्र किए जाओ और इस्तेकामत से डटे रहो इस दावत के ऊपर और इस ईमान के ऊपर जो है और इस हक के ऊपर। और तीसरी बात भी जो है वो भी जो है इस वाक्य से जो हमें पता चलती है वो दरअसल इसका जो उसलूब है वाक्य का और जिसका जो दावत का और बयान करने का और एड्रेस करने का जो उसलूब है वो है कि जिन लोग के हक के साथ जो लोग ज्यादती होता देख रहे थे अब ये प्रोसिक्यूशन देख रहे थे कि किस तरीके से मुसलमानों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। अब उन ये वो सारे के सारे इस पे खामोश थे, और ऐसी जो है ये जो किसी भी मुआशरे के अंदर किसी भी कश्मकश के अंदर जो एक खामोश बड़ी खामोश अक्सरियत हुआ करती है उसको जो है ना ये एड्रेस किया गया है कि ये तुम्हारा कैसा जमीर है कि तुम इस पूरी हक की कश्मकश के अंदर बिल्कुल खामोश हो, उठो और वो फर्ज अंजाम दो जो फिरौन के दरबार के अंदर एक रास्तबाज मोमिन ने अंजाम दिया। तो ये उनको जो है उनकी जमीर को भी जो है यहां पे जोड़ा गया है। उसके बाद फिर और इस सूरत में ये जो वाक्या है काफी हिस्सा जो है इस पे इसका जो है इसी पे इस वाक्य से मुतालिक है। और उसके बाद फिर तौहीद पर आफाक से दलायल हैं और अनफुस यानी नफ्स से भी दलायल आए गए हैं। इसके बाद अकली दलायल भी हैं और फिर तारीखी दलायल भी हैं। और इन जो इक्तदार और ताकत के नशे में ये जो फिरौनी रवैयों का जिक्र है और खास तौर पर कुरैशी क्यादत जो थी मक्का की मुतकब्बिर लीडरों की जो क्यादत थी उनको फिर हलाकत की धमकी भी दी गई है कि तुम ताकत के बलबोते पे ये सब कुछ जो कर रहे हो इस दावत के साथ, फिर याद रखो कि अल्लाह ताला ने मुतकब्बिर लीडरों के साथ जो है वो क्या किया है। लेकिन साथ साथ बिलाशुबा उन्हें तहदीद और धमकी भी दी गई है। लेकिन किसी भी जगह पे जो कुरान की दावत है, दावत के ऊपर ईमान लाने की तरगीब कहीं से भी कहीं भी जो ऐसा नहीं है कि उसे जो है रोका गया, मतलब उसे उसकी दावत मौजूद ना हो। हर जगह पे दावत इस ईमान के ऊपर दावत की जो है वो लाने की ईमान के ऊपर दावत की दी गई है कि इसके ऊपर ईमान ले आओ। और फिर जो है ये बात बताई गई है कि जो अहले ईमान है उनके लिए तो अल्लाह ताला के फरिश्ते भी दुआएं करते हैं, हदीस मुबारक में है, तो उनके लिए जो है वो फिर जो है वो दुनिया की दूसरी जो अल्लाह ताला की मखलूक है वो भी उसके लिए दुआएं करती है। अवामुन नास को खबरदार किया गया है कि तागूती ताकतों और आमरों की पैरवी से बचें, ये इन्हें कयामत के दिन बिल्कुल ना बचा पाएंगे। लिहाजा ये बात जो है जैसे हम अभी मुसलसल देख रहे हैं कि ये तमाम उस जो मक्की सूरतों के अंदर मुसलसल ये बात आ रही है कि ये जो क़यादतें होती हैं ये लोगों को जो है ये वरगला कर और लोगों को जो है राह रास्त से भटका कर जो है दूसरी तरफ ले जाती हैं, तो उससे बार बार जो है लोगों को खबरदार किया गया है। आफाकी और तारीखी दलायल भी हैं और इससे जो इस मक्का की मगरूर क्यादत को खबरदार किया गया है कि तुम अपनी अस्करी और तमदनी शानो शौकत और इक्तसादी खुशहाली जो भी थोड़ी सी तुम्हें हासिल है मक्का के अंदर उस पर तुम जो है वो तुम बड़े इतरा रहे हो। अल्लाह ने इससे पहले कई ऐसी ताकतों को नेस्तो नाबूद कर दिया है जो तुमसे कहीं ज्यादा जोर आवर थे, जिनकी मैयशतें तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी थी और जिनका जो है पूरा इंटरनेशनल और रीजनल जो इम्पैक्ट था वो कहीं ज्यादा जो है वो सख्त था। और बड़ी सख्त जो है इसमें फिर इसके लिए ये जो उनको तहदीद और धमकी दी गई है इसके लिए सूरत के अंदर अलबास और बासल्ला और बासुना के अल्फाज बार बार दोहराए गए हैं जिसमें बड़ी सख्ती और शिद्दत और जो है उससे की बात जो है वो की गई है। सूरत के आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को ये याद दहानी कराई गई है कि दावत हक के मुखालफीन के हाथों जो भी आजमाइशें तुम्हें पेश आ रही हैं उनको सब्र और अजीमत के साथ बर्दाश्त किए चले जाओ। अगर आप अपने मौकफ पर जो है वो डटे रहे तो बिल आखिर कामयाबी जो है वो आप ही को हासिल होगी। और आखिर में जो है वो भी बताया गया इंसानी तख्लीक से का जिक्र किया गया है कि इंसानी तख्लीक से तौहीद पर दलायल दिए गए हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इब्तिदा में एक बेजान मिट्टी से एक इंसान को बनाया, फिर जब वो जीता जागता इंसान पैदा हो गया तो उसका जो सिलसिला जो है वो नस्ल का जारी रखा, उसमें किस तरीके से फिर उसने इंसान का नुतफे से आगाज किया, फिर जमा उस नुतफे से जमा हुआ खून एक लोथड़ा बना, फिर हड्डियां और उस पर गोश्त और पट्ठे चढ़े और फिर इंसानी मुकम्मल ढांचा हो गया, फिर किस तरीके से उसमें जान और अकल और समाव बसर और फिर हजारों मील लंबी रगों का जो है वो जाल और खून की गर्दिश और दिल की धड़कन और ताकत गुफ्तार और तमीज अरफान और कुव्वत इदराक फहम फिरासत हुस्न जमाल जवानी बुढ़ापा मौत, इन सब पे तुम गौर व फिक्र करो। इस पे तुम्हें किसी पढ़ा लिखे होने की जो है वो जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें तुम्हारे सामने है, देखो और इन पे गौर करके अपने रब को पहचानो। तो ये बात जो है यहाँ पे आखिर में इस दलाइल से अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ और अल्लाह ताला को पहचानने की तरफ जो है वो दावत दी गई है। इसके बाद फिर सूरा हामीम सजदा है और सूरह हामीम सजदा भी इसी तरह जैसे हमारे हाँ जो कुरान पाक जो पब्लिश होते हैं उसमें इसका नाम हामीम सजदा है। और ये सूरत हवामीम की दूसरी सूरत है और इसका यहाँ पे जो कुरान पब्लिश होते हैं अरब इलाकों में इनमें इसका नाम सूरह फुसिलत है। जाहिर ये इसलिए ये बहुत जरूरी है जाना कि ऐसा ना हो कि आप जो है जब कहीं कोई दूसरा नाम लिखा हुआ देखें तो आप कहेंगे कि ये कौन सी जो है वो सूरत है जो कुरान में मैंने इसका पहले नहीं देखी। तो ये जान इस ये इल्म रखना भी जरूरी है। ये 1090 में करीबन जो है ये नाजिल हुई, और इसका जो है वो एक 1090 में एक वाक्या पेश आया, उस वक्त ये सूरत नाजिल हो चुकी थी या बिल्कुल बैनी, यह शायद उसी वक्त नाजिल हुई या इससे पहले नाजिल हो चुकी थी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तिलावत फरमाई। ये वो वाकया था जब उतबा बिन रबिया, आपको पता है कि बड़ा मशहूर जो है वो डिप्लोमेट अरबों का और लीडर, और ये जो है अबू सुफियान का खुसर था, तो उसने जो है जो कुरैशी की आदत थी सारी मुशरिकीन की, उससे मशवरा करके कहा कि अगर तुम सारे मंजूर करो तो मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके, तो मैं जो है वो आपकी तरफ से आपके बिहाफ पे उसे चंद जो है ना ये बातें कहना चाहता हूँ। उन्होंने उनसे मशवरा किया और सब ने इसको इंडोर्स किया कि ठीक है तुम जाके जो है ये बात करो। तो फिर उसने जो है वो का मतलब आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एंटरटेन किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम कहो अबुल वलीद जो बात तुम कहना चाहते हो कहो। तो उसने कहा कि भतीजे तुम अपनी कौम में फिर अपने नसब और खानदान के एतबार से जो हैसियत तुम्हारी है वो तुम्हें मालूम है, यानी तुम एक आला हसब नसब से बनू हाशिम से ताल्लुक रखते हो, मगर तुमने अपनी कौम पर बड़ी एक मुसीबत ले आए हो। तुम जानते हो कि हमारी दावत का सरचश्मा जो है कबीले के जो इत्तेहाद है और हमारी खानदान शिराजाबंदी है, अगर ये शिराजाबंदी और ये इत्तेहाद अगर टूट जाए तो फिर दूसरे कबाइल तो हमें बिल्कुल जो है वो खा जाएंगे, और जो हैसियत आज हमारी जजीरे अरब में है वो इससे हम बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। तो लेकिन तुम्हारी दावत ने जमात में इस पूरी हमारी खानदान में और कुरैश के अंदर और मक्का के अंदर एक तफरीक डाल दी है। जो शख्स तुम पर ईमान लेके आता है उसके न सिर्फ ख्यालात बदल जाते हैं बल्कि उसकी वाबस्तगियां और उसके मफादात, उसके मकासद, तो उसकी मंजिल की हर चीज जो है वो बदल रखी जा जाती है। तो उसने कहा, फिर कहा कि भतीजे ये काम जो तुमने शुरू किया है अगर इससे मकसद तुम्हारा कोई माल हासिल करना है तो हम सब मिलकर तुम्हें कुछ दे देते हैं और इतना माल देंगे कि तुम बहुत मालदार हो जाओगे और तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर तुम्हारा मकसद इससे कोई बढ़ाई चाहना है तो बिलाशुबा कोई मसला नहीं, हम तुम्हें मुतफिका तौर पर अपना जो है सरदार मान लेते हैं, और जिस मामले का फैसला तुम करोगे हमें जो है वो कबूल होगा, और अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई असर है यानी कोई जिन है और जिसे तुम खुदा खुद उस पर दफा करने पे कादर नहीं हो तो हम बेहतरीन किस्म के जो है वो अतबा बुला लेते हैं और तबीब और ये झाड़ पुगाड़ करने वाले, और अपने खर्च पे तुम्हारा जो है इलाज करवाते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये बातें ये सारी जो है बड़े तहमुल से आपने ये सारी बातें सुनी, और उसके बाद फिर नबी अकरम ने फरमाया कि अबुल वलीद क्या तुम वो सब कुछ कह चुके हो तुम कहने आए थे? तो उसने कहा कि हाँ मैं सब कुछ कह चुका हूँ। तो नबी अकरम ने फरमाया कि अच्छा अब मेरी बात सुनो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस सूरत सूरह हामीम सजदा यानी सूरह फुसलात की तिलावत फरमाई, और उतबा अपने दोनों हाथ जमीन पर टेके गौर से ये जो है तिलावत सुनता रहा, और जब आप जो है ये गालबन सजदे आयत है जो 38 नंबर आयत है शायद इस पर पहुंचे तो आपने फिर सजदा किया और फिर सर उठाकर फरमाया कि अबुल वलीद मेरा ये जवाब है, तुमने सुन लिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। और इसके बाद ये तारीख हकीकत है, ये उठकर उतबा जो है सुल्तान कुरैश की तरफ पास आया, ये सारे के सारे जो है वो हरम में इकट्ठे थे, तो उसने कहा खुदा की कसम उतबा का चेहरा बदला हुआ है और ये वो उतबा नहीं है जिस जो चेहरा ये लेकर गया था। तो फिर उसने जो है उसका सारी अहवाल बता दिया और तफसील बताई और कहा कि खुदा की कसम मैंने आज तक ऐसा कलाम कभी नहीं सुना, ये वल्लाह ये न शेर है और न ये सहर है और न ये कहानत है, मैं इन सब चीजों से आगाह हूं। ऐ सरदारानी कुरैश अगर मेरी बात मानो इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ दो, और मेरा ख्याल है कि ये कलाम जरूर रंग ला के रहेगा। ये बहुत बड़ा मुदब्बिर और जैसे मैंने कहा कि बड़ा डिप्लोमेट और बड़ा जो है एक लीडर और वो था, और उसने कहा कि फर्ज करो अगर अरब इस पे गालिब आ गए तो तुम्हें अपने भाई के खिलाफ हाथ उठाने से तुम बच जाओगे और वो उसे निबड़ लेंगे, और अगर वो अरब पे गालिब आ गया तो उसकी बादशाही फिर तुम्हारी बादशाही होगी और उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। सरदार कुरैश उसकी ये बात सुनकर बोल उठे कि बिल आखिर मोहम्मद का जादू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकौल उनके उसका जादू जो है वो अबुल वलीद पर भी चल गया। और तो उतबा ने फिर उन्हें कहा कि मैंने ये जो बात जो मैंने राय दी थी ये मैंने जो महसूस किया तो मैं बता दिया, अब तुम जो चाहो जो है तुम्हारा जो चीज चाहे करो। तो ये वो जो है वो बात थी, और इससे बहुत सारी हमें बातें जो है पता चलती हैं कि किस तरीके से कुरान के बड़े बड़े जो ये नबी के समय देखें कि बहुत बड़े इतराजात भी थे आपके, जो तरगीब भी थी, टेम्पटेशन भी थी, आपको लालच भी दिया गया, और इन सारे इतराजात सारी चीजों के जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के हवाले से जो पेश किया। कुछ बड़े लेक्चर्स, कोई बहुत बड़े मजाकरे डायलॉग, बहुत बड़े कोई जो है वो ये मुनाजरे नहीं हुई है, बल्कि आपने हर जगह पे इस कुरान करीम को जो है वो पेश किया, और इसे कुरान करीम ने किस तरीके से अजहान और कुलूब को बदला, ये जो है उत्बा की जो बात है, और उत्बा की ने जो वापस आकर जो बात बताई है, ये उस पर दलील है कि किस तरीके से ने कुरान ने अजहान को बदला। इस सूरत के जो मजमून है वो जाहिर है तौहीद है, और ना मानने वालों को इंजार यानी खबरदार किया गया है, और ईमान वालों की अबदी कामयाबी की बिशारा दी गई है। फिर मुतकब्बिर जालिम तागूती फिरौनी की आदत को और कुव्वतों को जो है वो हलाकत की जो है वो तंबीह की गई है, और उनको फिरौन की हलाकत से इबरत का जो है मशवरा दिया गया है। आद और समूद की हलाकत से डराया गया है कि वो भी इसी जुर्म के अंदर यानी इस्तकबार फिल अर्द यानी किस तरीके से मुतकब्बिर थे वो, किस तरीके उन्होंने इस्तकबार किया और जो है पैगम्बरों और रसूलों का इनकार किया, और किस तरीके से उनको अल्लाह ताला ने फिर जो है हिला कर डाला। कुरान की जो है वो सबसे पहले कुरान के तारुफ करवाया गया कि ये अल्लाह ताला का कलाम है और उसका नाजिल करता है, और उसमें से अरबी में नाजिल फरमाया है ताकि दुनियावी और आखिरी जिंदगी की कामयाबी के लिए जिन हकायक का पर ईमान लाना जरूरी है लोग आसानी से उसको समझ सकें और उस पर ईमान ला सकें। ये बात जो यहाँ पे बताई गई है, और ये भी बता कि ये जो कुरान से इराद कुरान के जो अहकाम है और कुरान के मौनी और कुरान के मजामीन और मकासिद और कुरान के वाज और मिसालें, कुरान के वादे और वईदे, ये सब बिल्कुल वाजे करके इस जो है कुरान के अंदर जो है बता दिए गए। लिहाजा अब जो लोग इसे एराज बरतेंगे वो इंतहाई बदबख्त है। अल्लाह ताला ने इनको अंधों से और बहरों से तशबीह दी है कि बिल्कुल वो जानवरों की मानिंद है, उनके जहनों पर पर्दे पड़े हुए हैं और उनके कानों में डांट है, वो कोई बात सुन नहीं सकते हैं। तो बल्कि यानी उनको जानवरों से भी बदतर होने की मिसाल है कि कम से कम जानवर जो है जब उन्हें अपना मालिक आवाज देता है तो उसको सुनते हैं और उस पे जो है रिएक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद जो है वो बताया गया कि जो लोग भी ईमान लेके आए तो उनकी ईमान का तकाजा ये है कि बिल्कुल शुरू के अंदर ही जब भी वो ईमान ले आए दायरे के अंदर दाखिल हो जाए तो उनसे इस्तकामत का मुतालबा किया गया, इस्तकामत का वो उस इस्तकामत को जो अख्तियार करें। इस रास्ते के अंदर यकीनी तौर पर उन पर बहुत बड़ी आजमाइश आएगी और उनको आजमाया जाएगा, तो इस पे वो जो है साबित कदम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत और रिसालत की सराहत की गई है कि तमाम अल्लाह के रसूल जो आए हैं वो सारे के सारे जो है वो अल्लाह ताला के बंदे थे, अल्लाह ताला के इंसानों में से थे, और उस पर अल्लाह ताला ने उन पे जो है वही की थी, इस वजह से वो जो है वो दूसरे लोगों से इस लिहाज से सिर्फ वही की बुनियाद पर जो है मुख्तलिफ थे। तौहीद के ऊपर जो है वो आफाकी दलाइल दिए गए, कैसे अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान को बनाया, आसमान पहले धुआं था फिर आसमान और जमीनों को जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो मिलाया यानी कायनात को, फिर वजूद में आने का हुक्म दिया उसने, फिर तो उन्होंने जो है वो फरमाबरदारी की यानी कायनात पूरी की पूरी अल्लाह ताला के हुक्म से फिर वजूद में आ गई। तो ये जो है वो एक इसकी आजकल आप देख सकते हैं कि इसकी एक शरह जो है वो बिग बैंग के हवाले से भी जो है वो की जाती है। तौहीद के ऊपर तारीखी दलायल है जो है वो कौम समूद का जिक्र भी है, उनका जुर्म भी बताया गया है, इस्तकबार है, ना मानने वाले जितने भी लोग हैं अल्लाह के दुश्मनों का अंजाम उन्हें बताया गया है कि याद रखो कि जो है वो ना मानने का अंजाम ये है, और फिर उनको ये बताया गया कि उनके अपने कान और उनकी आंखें और उनकी जिल्द और उनके अपने अज़ा उनके खिलाफ जो है वो गवाही देंगे, ये बात जो है वो उनको याद रखनी चाहिए। और मुनकरीन और मुतकबरीन के बरक्स मुखलिस जो मोमिनीन है उनका तज़किरा किया गया है, उनकी सिफात बताई गई है, वो ईमान पर इस्तिकामत दिखाते हैं। जब उन्होंने कहा अपने रब को, अपना रब हकीकी अल्लाह मान लिया है, रब मान लिया है, तो फिर उस पर जो है वो डट गए, और फिर जो है वो कुछ भी आ जाए जो है कोई इसकी परवाह नहीं है, ये जान जाती है तो जाए, तमाम आजमाइशों को उन्होंने डट कर मुकाबला किया, और फिर इन दुनिया आखरत में उन पर अल्लाह फरिश्तों का नजूल जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि होता है जो लोग ये इस रास्ते के ऊपर इस्तिकामत दिखाते हैं इस दुनिया के अंदर भी और आखरत के अंदर भी, और आखरत में मजीद जो है अल्लाह ताला उनको अपनी पसंद की जिंदगी, मनचाही जिंदगी अता फरमाएगा। बड़ा ये मशहूर है इन्नल्लज़ीना सुमस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका वाला ये रुकू है, और ये बड़ा खूबसूरत और जबरदस्त है। उन लोगों के लिए खुशखबरियां हैं जो ईमान लाने के बाद उसके ऊपर साबित कदम हो जाते हैं, और नफ्सियाती दलायल भी इसमें दिए गए हैं कि इंसान जो है बड़ा जो है थुड़दिला है, और न जरा सी कोई मुसीबत आती है तो फिर इस मायूस हो जाता है, और जो है वो अल्लाह ताला से दुआएं करने लगता है। अल्लाह ताला जब नेमतें बरसाता है उस मुसीबत को दूर कर देता है तो फिर अपने रब को भुला देता है और कहता है ये तो सारे के सारा मैं जो है मैंने अपनी जो मेरी मेरी तदबीर है और मेरे दस्तोबाजू से जो है सब कुछ मेरा ये ठीक हो गया है। आखिर में कुरान करीम की सदाकत के दलाल दिए गए हैं, और ये बात वाज़े फरमाई है कि आज तुम्हें इस्लाम की सदाकत समझ में नहीं आ रही, मगर अनकरीब तुम देखोगे कि इस कुरान की दावत ये पूरे आफाक पे जो है वो छा गई है, और कुरान की सदाकत के असार आफाक में भी तुम देखोगे और अनफुस के अंदर भी अपने आप में भी देखोगे। और ये मशहूर आयत है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, अनकरीब हम उनको आफाक में निशानियां दिखाएंगे और खुद उनके अंदर भी जहां तक कि उन पे जाहिर हो जाएगा कि कुरान बिल्कुल हक है। तो ये जो दावत है ये इसका एक मानी तो ये हो सकता है कि अपने जल्ब में जब भी एक अजीम शान मजहबी और अखलाकी और जहनी और फिक्री और तहजीबी और सियासी और तमदनी मुआशी इनकलाब लेकर जो है आई 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 आएगी, और बिल्कुल ऐसा हुआ है, और फिर उसके जसरात जहां जहां पहुंचे तो इंसान के बेहतरीन जो है वो जोर खुलते गए। और इसके दूसरा मतलब ये भी है, और बिल्कुल ये भी दोनों मतालब जो है वो सही है कि अल्लाह ताला आफाक के अंदर यानी इस अर्ज़ो समा में इस पूरी यूनिवर्स के अंदर और के अंदर भी और फिर इंसान के अपने वजूद के अंदर भी लोगों को वो निशानियां दिखाएगा जिनसे ये बात खुल जाएगी कि जो कुछ कुरान बता रहा है कुरान की तालीम बिल्कुल हक है। तो कुरान में देखें कि जो है ये जो भी आज किस तरीके से जो है वो बहुत सारी बातें ऐसी हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द एक्सफोलिएशन ऑफ और एवोल्यूशन ऑफ द नॉलेज जिस तरीके से हो रहा है पूरे आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे के अंदर ये सब कुछ जो एक्सप्लोजन हुआ है मालूमात का पिछले 50 60 से 100 बरस के अंदर, और फिर नित नए रोज इजादात जो हो रही है और साइंसी मालूमात के जो जो हकायक जो सामने आ रहे हैं, तो ये जो है उसके ये मतलब ये जब ऐसा होता चला जाएगा मुसलसल तो फिर हर आने वाली चीजें जो मुसलसल ये साबित करती चली जाएंगी कि कुरान का हक होना बिल्कुल वाजे है। अब देखिए कि कुरान में सिर्फ जो है ये फिर बहुत सारे लोग जो है सवाल करते हैं कि कुरान में ये है और ये कैसे और ये कैसे है, तो याद रख लेना चाहिए कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, लेकिन कुरान ने जिमनी तौर पर ये हकायक को ऐसा बयान किया है कि जिनमें जो है वो इशारात मौजूद है, और ये इशारात ऐसे हैं कि जिस जमाने में नाजिल हुआ उसके बाद में आने वाले लोगों के लिए तो ये जो है इशारे ही थे, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इशारे उनको अगर आप जो है एक्सट्रपोलेट करें और उनका इतलाक जो है वो जो नई आने वाली इंसान को मालूम मिलती है उन पर करें तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि ये कुरान का बयान करता हक के मुताबिक है ये चीजें। तो ये फिर इसका ये जान लेना चाहिए कि कुरान में सिर्फ इसी हद तक हकायक का जिक्र किया गया है जिस हद तक इंसान उन्हें समझ सकता था, और उसी अंदाज में उनका जिक्र किया गया है जिस हद तक इंसानी फहम और शऊर की रसाई उन तक हो सकती थी उस वक्त। जाहिर है वो हकायक जिन तक आज इंसान की तदरीजन रसाई हुई है, इन इंसान जो जो इल्म का इर्तिका हुआ है इंसान का कई हजार साल के अंदर कई सौ बरस के अंदर जो हुआ है, अगर इन हकायक को उस वक्त पूरा बयान कर दिया जाता तो देखें कि किस कदर जो है वो इतराजात होते और किस तरीके से फिर वो लोग जो है वो उनको कौन समझ सकता था इतने हजार बरस के अंदर जो 1500 बरस के अंदर। तो ये फिर वो बात थी ये इसमें ये हिकमत है, इसलिए कुरान ने इन जो है साइंसी जो हकायक है या जो नेचुरल फिनोमेनास के जो हकायक बयान किए हैं या अनफुस के दलायल जो बयान किए कि इंसानी जिस्म के अंदर जो अल्लाह ताला ने खुद जो है मौजे बरपा रखे कर रखे हैं उसकी तखलीक के मौजे हैं उनका जिक्र भी इसी ले हवाले से है, बिल्कुल जिमनी तौर पे है, ताकि जो है फिर आने वाले लोग इस पे मजीद जो है वो तहकीक करके और इसको जो है वो ये देखें कि अल्लाह ताला ने इन हकायक को कैसे जो है पहले से बयान कर दिया है। लेकिन जाहिर है ये बिल्कुल नेचुरल अंदाज है बयान करने का, और ये लॉजिकल है और इल्म इंसानी अकल और मंतक के मुताबिक है कि इनको उस वक्त इशारतन बयान कर दिया जाता और बाद में इनकी तदबीक और इनको जो है एक्सट्रपोलेट जो है करके इनको बताया जाता। तो आजकल के दौर में इस बात की जरूरत होती है कि ये जो आजकल की साबित शुदा हमारी साइंसी मालूमात और आगे इल्मी मालूमात है उनके मुताबिक ये जो कुरानी इशारात है इन पे तहकीक करके इनको जो है मजीद आगे बढ़ाया जाए, ताकि कुरान की ये जो अकादियत है जिससे अल्लाह ताला ने फरमाया सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहुल हक, इसके मिस्दाक जो ये बातें पूरी हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह।